संसार में जो भी दुख सुख हैं वे सब वृत्ति का विलास मात्र है। वृत्ति माना क्या, उसको कोई लोग सुरता भी कहते हैं, कोई फुरना भी कहते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे, पास में कौन है, जब तक तुम्हारी वृत्ति नहीं गई तो तुम्हें पता नहीं चलता। इसका नाम वृत्ति है। तो संसार का व्यवहार सुख दुख आकर्षण विकर्षण भोग त्याग ये सब वृत्ति का ही तो विस्तार है। पंडित साधु मूर्ख ये सब वृत्ति का विस्तार है। वो वृत्तियां हृदय से निकलती है, उस वृत्तियों को कल्पना भी कहा जा सकता है। वो यदि दुख में सुख की कल्पना करती है तो वृत्ति को दुख सुख भासता है। विष में अमृत की भावना दृढ़ करती है तो विष भी उसे अमृत जैसा लगता है। ये वृत्ति का चमत्कार है। आकाश में हाथी और रथ की भावना करती है वृत्ति तो उस बादलों में हाथी रथ घोड़े आदि भासते हैं। ठूंठे में चोर की भावना करती है तो ठूंठा चोर हो भासता है, और ठूंठे में यदि साधु की भावना करती है तो ठूंठा साधु हो भासता है। सीपी में रूपे की भावना करती तो सीपी रूपा रूप में भासती है, और रस्सी में सांप की भावना करती तो रस्सी सांप हो भासती। ऐसे ही वृत्ति इस नश्वर देह में सुख बुद्धि करती है तो देह के संयोग से इसे सुख भासता है, और यही वृत्ति जब परमात्मा में सुख बुद्धि करे तो परमात्मा का तो वास्तविक सुख है, वो परम सुख को उपलब्ध हो जाती है। सारा वृत्ति का खिलवाड़ है। तो कुछ नहीं, फिल्म का पर्दा है, और युवक बेचारे पढ़े लिखे कई लोग जाते हैं पर्दे पर, जो दिख रही है अभिनेत्रियां अभिनेताया और कुछ, वो सारा हमारे वृत्तियों को संछेड़ कर और नीचे के केंद्रों में लाने का सामान है। तो फिल्म में जो हमने भवन भूमि मकान रूप सौंदर्य पति पत्नी का प्यार आदि जो देखा, वो तो हमको उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन हमारी वृत्ति ऐसा प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो जाएगी। देखा है फिल्म में, लेकिन वृत्ति नीचे के केंद्रों में आ गई, वासनाओं के केंद्रों में और विकसित हो गई, अपने मूल हल्का रूपांतर तो हुआ नहीं। तो क्या है कि उस कई जवानों को मैंने उनके चेहरे देखे, यहाँ न आने वाले लोग भी कई बार मिलते हैं सड़कों पर, कई बार बाजार में, कई बार किधर जहाँ कहीं नजर पड़ जाए लोग तो मिलेंगे ही। उनके चेहरे से खबर आती है कि इन्होंने अपने जीवन की शक्ति का बुरी तरह विनाश कर दिया। कैसे किया? फिल्म देखकर। उनकी वृत्ति रात्रि को फिल्म की जो प्रेयसी दिखी, जो चित्र देखे, उस चित्रों के साथ वो अपने विकारों को उत्तेजित हो जाते हैं और शरीर उनका धुल जाता है। ये भी तो वृत्ति का प्रभाव, ये कल्पना है। तो कल्पना में आदमी का विनाश भी हो जाता है, और कल्पना में आदमी का रक्षण भी हो जाता है। है तो कल्पना, लेकिन कल्पना जीवन के है तो कल्पना, स्त्री नहीं है, अभिनेत्री नहीं है, लेकिन उसका चित्र देखा है, उसके हास्य विलास को देखा है फिल्म में, और रात्रि को वो उसी के साथ अपना हास्य विलास करके शरीर को नाश कर देता है। ऐसा भी हुआ करता है। तो कल्पना, तो कल्पना होती है प्रारंभ में कल्पना, लेकिन वो कल्पना स्थूल शरीर पर बड़ा असर भी डालती है। ऐसे ही कल्पना शुरू में करो और वो अपने स्थूल शरीर पर अच्छा असर भी डालती है। ये दोनों माया के अंतर्गत है, संसार के अंतर्गत है, चढ़ाव उतार संसार के अंतर्गत है। साधक की बुद्धि का विकास होता है ध्यान भजन जप तप सेवा करके, उसकी वृत्ति की मलिनता घटती जाती है। अब उसे उस तुच्छ भोगों में, तुच्छ आकर्षणों में, पर्दे के तो क्या, वास्तविक भी जो भोग हैं उसको विष समझता है, उतना उसको विवेक आ गया है। लेकिन कई जन्मों की इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं, इस प्रकार का जो आकर्षण है, भोग की जो गरेड़ पड़ गई है, जो चीला पड़ गया है, जो एक लकीर गहरी हो गई है, उस लकीर में से वो बाहर निकल नहीं सकता और उस लकीर के परिणाम को समझता भी है, अच्छा भी नहीं लगता। भोग में फिसल जाना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन पुरानी जो आदतें हैं, संस्कार हैं, उसके अनुसार वो गिरता जाता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है, फिर संभलता है। अब उसे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन पुराने संस्कार उसे घसीट जाते हैं वासना के। जय जय, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। तो पुराने संस्कार वासना जो है हमें घसीटती है। एक तरफ जिसको विवेक मिला उसको सब कुछ मिल गया, और विवेक इनकार करता है, वासना घसीटती है। अब विवेक कभी कभी तो जीत लेता है, ज्यादा समय हार लेता है। तो क्या है कि विवेक दुर्बल हो जाता कि आपड़ू काम नहीं, और मिलते भी ऐसा कि भाई ये तो संसार है, शरीर इंद्रियों को कब तक रोकोगे, ये क्या करोगे, संभोग से समाधि फलाना आदि आदि सुने तो भाव तो तुम वैद्य की दो और स्पीड में आ गए। लेकिन उनमें से चुने हुए जो समझू लोग हैं, वो तो वासनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं, वासना नहीं रुकती तो दुखी होते हैं, और रुकती है तो कभी कभी हिम्मत आती है। लेकिन हिम्मत आई और कभी हिम्मत हार गए, कभी हिम्मत आई कभी हिम्मत हार गए, इसमें भी जीवन पूरा हो सकता है। ये उपाय तो है बचने का, ठीक है, लेकिन वेदांत के तत्व को जानने वाले आत्मवेता आत्मरामी महापुरुष कहते हैं इससे हम बढ़िया साधन तुमको बताएं। तुम्हारी वृत्ति विषय विकार में फंस कर सुख चाहती, क्षणिक सुख मिलता है, बाद में विषाद होता है, भोगता थक जाता है। ऐसा कोई भोग नहीं कि भोगता को थकाए नहीं, ऐसा कोई भोग नहीं कि भोगता के मन को दुर्बल न करे, ऐसा कोई भोग नहीं कि भोगने के बाद विषाद पैदा न हो, घृणा या ग्लानी पैदा न हो। घृणा ग्लानी विषाद पैदा होने के बावजूद भी अनुभव है 15 दिन पहले का, अनुभव है 4 दिन पहले का, अनुभव है 10 दिन पहले का, कि कोई सार नहीं। और कई ऐसे ही सत्ता का, उसका एक गया दूसरा गया, देखते कोई सार नहीं, जीते तो भी क्या है, जैसे जुआरी होते ना। तो सिंधी जगत के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हारे जुआरी का आधा मुंह काला और जीते जुआरी का पूरा मुंह काला। खट्टे ज्वारी जो अधमुकार, हारे ज्वारी जो अधमुकार हो, खट्टे ज्वारी जो सजो मुकार हो, ऐसी कहावत है। हार गया है ज्वारी तो अब उसके पास अपनी तुच्छ वृत्तियों को पोषने के साधन नहीं है, इसलिए उसका आधा अकल्याण है। लेकिन जिसने जुगाड़ में जीत लिया है मुफ्त का, तो उसकी तो वासना और भड़केगी, उसका पूरा सत्यानाश है। ऐसे ही हमने कावे दावे से जो भी कुर्सियां बुर्सियां ये को जो कुछ पा लिया है, तो बाहर से तो हम समझते हैं कि हम जीत गए या हमने पा लिया है या ये हो लिया है, लेकिन यदि हम सावधान न रहे तो हमारी वासनाएं हमारा पूरा बर्बादी कर देगी। जय जय। तो अब समझना ये है कि है सारा वृत्तियों का खिलवाड़। अब वृत्तियों को आप बिना सुख की इच्छा के रह नहीं सकते, और संसार का ऐसा कोई सुख नहीं कि आपके पास टिक जाए। यदि टिक गया होता तो हजारों जन्म से तुम सुख लेते आए हो, एक एक अंश मात्र भी टिकता तो अभी सुख के गोदाम होते हमारे पास। इस जन्म का भी यदि सुख टिक जाता तो एक एक मूंग जितना क्या, एक एक राई के दाने जितना सुख सुख लिया, जो दिन में कई ऐसे राई के दाने इकट्ठे हो गए, साल में कितने ही हो गए, अभी की उम्र में तो हमारे पास कुछ तो पोटला होना चाहिए। ये सुख टिकता नहीं क्योंकि वृत्तियां बदलती रहती। अब साधक के जीवन में और बुद्ध के जीवन में, अब यहां तीन प्रकार की वृत्ति के लोग रहे, एक बुद्ध की वृत्ति, दूसरी साधक की वृत्ति और तीसरी सिद्ध की वृत्ति। बुद्ध की वृत्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई, इतनी जाड़ी हो गई है कि उसको विवेक करने का मौका ही नहीं, खाया पिया रहा जिया बस पशु जैसा जीवन। लेकिन साधक सोचता है कि आखिर कब तक, इतना खाया फिर क्या, इतना लिया फिर क्या, राज्य मिला फिर क्या, हो गए धनवान फिर क्या, हो गए सत्तावान फिर क्या, हो गए रूपवान आखिर क्या, ततः किम। हम चल रहे हैं, बखमल बिछ रहा है, सुंदरियां हीरे जड़ित कंगन पहर कर चमर डोला रही है, राजा दी राज महाराज छड़ी पुकारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी मिट्टी में मिल गए, जमीन दोस्त हो गए, ततः किम, आखिर कब तक, आखिर क्या, छेवटे शू। ये साधक की वृत्ति है। तो देखता है कोई सार नहीं, कोई सार नहीं देखता है, फिर भी वो बेचारा वहीं बह जाता है। क्यों? क्यों? संस्कार और वासनाएं पुरानी है। तो वो अत्यंत मूर्ख है, उसको तो पता ही नहीं, इसलिए उसी में अपने को सुखी मान लेता है। अत्यंत जो समझू है वो अपने सत्य स्वरूप परमात्मा के सुख में मस्त है। लेकिन हम लोग जो हैं बीच के, त्रिशंकु की नाई झूले खाते हैं। जब मिल गए मूढ़ों का संग तो हमको लगा के ठीक से बाबजी अगर गया ए बधु बात तो हाची से, पण आ बदा करे छे तो आपने धमधम आओ के। जब मूर्खों के संग में गए, जब उसी वृत्ति में बहने वाले मूड, उसको नहीं कहते कि जो अनपढ़ है, जय जय, मूड उसको नहीं कहते कि जो मजदूरी कर रहा है, मूड उसे कहते हैं कि जो संसार को सत्य मानकर संसार की नश्वर चीजों से अपने को सदा सुखी रखने की कोशिश में लगा है, उसको मूड कहा जाता है। तुम पत्थर को मूड नहीं कहते, पत्थर को बेवकूफ नहीं कहते। क्यों? उसमें कुछ है ही नहीं तो बेवकूफ कैसे कहना। वृक्ष को तुम बेवकूफ नहीं कहते। मूड का मतलब है कि कुछ जाने और कुछ न जाने। लड़के को कहा कि जा चाय में खांड डाल दे, लड़के ने डाल दा, खांड के बदले नमक डाल दे, कह रहे छोरा तो साहब मूर्ख है, मूड है। तो चाय की तपेली को तो जानता है, वचन को भी तो सुनता है, लेकिन नमक खांड के बदले नमक डाल दिया। जहां दाल में नमक डाल दे तो उसने भर के मुठा खांड डाल दिया। रसोईया ने कहे तो रसोईया मूर्ख है, मूड है। तो मूड उसे कहा जाता है कि जो समझना चाहिए वो न समझे, जो पाना चाहिए वो न पाए, जो करना चाहिए वो न करे, और जो न करना चाहिए वो उस वक्त करे। समझ गए ना मूड की परिभाषा। तो श्री कृष्ण ऐसे लोगों को कहते हैं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूढ़ लोग उसमें तत्व को अपने निज स्वरूप को नहीं देख सकते, ज्ञान की आंख से देखा जाता है। तो ये मूढ़ता भी तो वृत्ति का खेल है। साधन भजन से ये वृत्तियों को शुद्ध करके मूढ़ता हटाकर आदमी विवेक जगाता है। लेकिन विवेक होगा तभी तो साधन में जाएगा, जय जय, विवेक होगा तभी तो साधना की तरफ जाएगा, और साधना करेगा तभी विवेक जगेगा। तो मानना पड़ेगा कि सत्संग से विवेक जागृत होता है, विवेक से साधना बनती, साधना से जैसे नाविक नाव को ले जाता है, नाव नाविक को ले जाती, ऐसे सापेक्ष हैं, एक दूसरे के पोषक हैं। साधक के लिए वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो वो बॉर्डर पे खड़ा है, मूढ़ों का संग मिलता है तो एक पुरानी अपनी वासना और आदत और दूसरा वही मिला। विवेकानंद कहते थे कि अभी तक तुम सावधान रहना कि तुम्हारा घाव भी पूरा रुंझाया नहीं है, उसको खुजलाना मत। जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक फिर पुरानी जो वासनाएं हैं उसको जागृत मत होने देना। किन जागृत होने देने तो हम नहीं चाहते हैं, हो जाती है क्या करें। हम नहीं चाहते हैं कि हम गिरे फिसले, साधक हैं फिसल जाते हैं कि संस्कार पुराने हैं, पुराने हैं उसके लिए गिरते ही रहे ऐसा भी नहीं, और पुराने हैं उस लिए हम घबरा जाएं ऐसा भी नहीं, और पुराने हैं नहीं छूटेंगे ऐसा करके हार जाए ऐसी बात भी नहीं। प्रयत्नशील रहे, और प्रयत्न कई प्रकार के हैं। भोगियों के संग से, स्त्रियों के संग से काम विकार की वासना पुरानी जग जाती, भोगियों के संग से पुरानी भोग वासना जग जाती। इसलिए कुछ समय निकालकर हम इंद्रियों को आकर्षित करने वाले पदार्थों से बचाएं अपने को। इसलिए आद्य शंकराचार्य ने कहा, एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। कभी एकांत वास का उपयोग करो। आप लोग तो वही के वही हैं, लेकिन 8 दिन मौन मंदिर में रहते हैं तो आपकी विचारधारा एकदम दिव्य हो जाती है। बड़े दिव्य अनुभव होते हैं, सूक्ष्म जगत के अनुभव होते हैं, किसी को कुछ अनुभव होते हैं, तो आप वही के वही। तो इंद्रियों की पुरानी जो घरेड़ पड़ी है, उस घरेड़ से बचकर जब आप आ जाते हैं कुछ सात्विक वातावरण में, तो आपकी ऊंचाई भी तो आप अनुभव करते हैं। इसलिए जिसको इसी जन्म में मोक्ष चाहिए, जिसको इसी जन्म में अपना कल्याण चाहिए, भले बाबा जी न बने, साधु न बने, जंगलों में न जाए, कंदराओं में न जाए, गुफाओं में न जाए, फिर भी वर्ष में 10-15 दिन, 25 दिन, 5 दिन, ऐसे जितना जिसकी हिम्मत हो, कैपेसिटी हो, उतना कभी कभी किसी से परिचय न हो, एकांत में चला जाए और अपने साधना के रास्ते पर कदम रखे। किसी से परिचय न हो उसका मतलब यह भी नहीं कि आदमी से भी परिचय न हो। परिचय का मतलब वासना भड़काने के वातावरण में नहीं, रोज के वातावरण से कुछ अलग निकल के अपनी भीतर की यात्रा करे तो उसकी वृत्तियों में शुद्धि बढ़ जाएगी और हिम्मत आ जाएगी। फिर भी ये कोई पराकाष्ठा नहीं। ऐसा करते करते उसकी वृत्ति जब आज्ञा चक्र तक पहुंच गई या विशुद्धाख्या चक्र तक पहुंच गई, वो आनंदित हो जाएगा, सामर्थ्य बहुत आ जाएगा। फिर भी पुरानी घरे है अथवा प्रकृति को उससे कुछ कराना है तो वो हो सकता है कि घर में आए, बच्चे को जन्म दे, हो सकता है घर में नहीं आए और जगह कहीं बच्चे को जन्म दे दे, ऐसा भी हो सकता है। यदि तरतीव्र प्रारब्ध है तो उसका दृष्टांत क्या, पाराशर ऋषि किश्ती में बैठकर पार कर रहे थे नदी। मच्छगंधा नाम की लड़की युवती, उसका बाप चला गया था, शाम का टाइम होगा कि दोपहर का टाइम होगा, पाराशर को हुआ कि पाराशर ने उस लड़की को देखा और कहा कि मेरे साथ तू संसार व्यवहार में उतर। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं मच्छी मार की लड़की हूं, मेरे शरीर से मच्छी की गंध आती, मच्छगंधा मच्छी के मुंह से मैं निकली हूं, मच्छी के पेट से निकली हूं, ये कैसे हो सकता है। और कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा, तू चिंता मत कर, मैं कोहरा कर देता हूं, कोहरा कर देता हूं, कोहरा कर दिया, अंधाधुंधी कर दी। बोले अब कोई देखेगा तो नहीं, अंधाधुंधी तो हो गई लेकिन मेरे को क्या लाभ। बोले अभी तेरे शरीर से मच्छी की गंध निकलती है, बाद में तेरे से सुगंध, अभी दुर्गंध निकलती है, सुगंध निकलेगी, योजन गंधा तेरा नाम पड़ेगा। योजन गंधा तो पड़ेगा लेकिन फिर कुछ संतति हो जाए तो समाज में हमारे लिए तो मुसीबत। बोले नहीं, संतति हो भी जाएगी और जन्म जात जन्म क्या चला जाएगा, तू कुमारी की कुमारी रहेगी। और वही पाराशर के द्वारा उस अनंत ब्रह्मांड को संचालन करने वाले परमात्मा ने प्रकृति की इस लीला को घटाकर पाराशर के द्वारा वेद व्यास जी को जन्म दे दिया। तो हम देखेंगे कि पाराशर जैसे व्यक्ति का पतन हो गया नहीं, उत्थान हुआ नहीं। जब तक शरीर है, अंतःकरण है, तब भी इन केंद्रों से चढ़ना उतरना हो सकता है, लेकिन जिसके केंद्रों का रूपांतर नहीं हुआ उनका गिरना ही गिरना हुआ। जिनका रूपांतर हो गया उनका शरीर परमात्मा का साधन बन गया। जैसे कबीर को पुत्र है, पुत्री है, वशिष्ठ को पुत्र है, थे। लेकिन फिर फर्क क्या होता है कि हम लोग मेरा पुत्र करके, मेरा परिवार करके हमारी वृत्तियां वहीं घूमती रहती है, और उन पुरुषों का मेरा पुत्र मेरा परिवार बोलते समय भी वो ऐसी जगह पे होते हैं कि वो समझते हैं कि सब वृत्तियों का खिलवाड़ है, ये कल्पना मात्र है, ये लोग असंग हो गए। तो साधक हो, बुद्ध हो, चाहे सिद्ध हो, जब शरीर है तो सब अपनी इच्छा के अनुसार घटनाएं नहीं घटती और सब दिन एक जैसे भी नहीं होते, सब अवस्थाएं एक जैसी नहीं होती किसी की भी। तो मूड क्या है कि अवस्थाओं को एक जैसी करने में लगा है और नहीं हो रही, उसी लिए परेशान है। साधक अवस्थाओं को भी एक जैसा रखना चाहता है और नहीं हो रही है, वृत्तियों को एक जैसा रखना चाहता है, उसी लिए वो परेशान है। भोगी सतत भोग में सुख ढूंढता है और सतत भोग बने रहे, वो सतत भोग भी नहीं है और सतत भोग की वृत्ति भी सुखाकार नहीं रहती, उसी लिए वो दुखी है। त्यागी हमारी वृत्ति में त्याग और प्रभु की याद बनी रहे, ये बनी रहे, तो सतत प्रभु की याद नहीं बनती, अथवा बनती है तो प्रभु के स्वरूप का पता नहीं चलता। तो इस प्रकार वो भी दुखी क्योंकि जब तक वृत्तियों में हम लोग रहते हैं तब तक वृत्तियां कभी सुखाकार होगी कभी दुखाकार होगी, कभी वृत्ति के अनुकूल होगा कभी वृत्ति के प्रतिकूल होगा। श्री कृष्ण जैसे जो पुतना को छठे दिन की उम्र में पुतना को आकाश विहार कराते कराते पहुंचा दिया, श्री कृष्ण के जीवन में पद पद पे चमत्कार दिखे, अद्भुत लीलाएं दिखी। श्री कृष्ण के होते होते श्री कृष्ण के बच्चे दारू पीकर आपस में लड़ मड़े, ये शास्त्र लिखने वाले की कितनी सच्चाई और कितनी उदारता है। ये तो सारू सारू लखे, बीजू बधु शू करवा लखे। ये समझना होगा कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा कहो जो कहो कम है, तो उनके होते हुए उनके बच्चे, भगवान राम के होते हुए दशरथ राजा चल बसे और भगवान राम की मां विधवा, शास्त्र कह रहे हैं। तो ये जो बाह्य जगत की लीलाएं हैं, खिलवाड़ हैं, वे आदमी ज्यादा दुखी होते हैं जो चाहते हैं कि आम केम ना थयो, आम केम ना थयो, आओ आटलू केम थियो, आओ केम पराशरे आम केम करियो। जो आदमी अपने को कर्ता मानता है वो कृष्ण को भी कर्ता मान लेगा, वो पराशर को भी कर्ता मान लेगा, परब्रह्म परमात्मा को भी कर्ता मान लेगा, लेकिन जो अपने को दृष्टा मानता है वो कृष्ण को भी दृष्टा मानेगा, अथवा जो कृष्ण को दृष्टा माने वो अपने को भी दृष्टा मानेगा। अब फिर दूसरे ढंग से विचारें, भोगी वृत्तियों को भोग से सुखद बनाना चाहता है, उसे लिए वो हताश हो जाता है, खिन्न हो जाता है, अंत में बुरी तरह हार के जाता है। भक्त वृत्ति में स्मृति भरना चाहता है, योगी वृत्ति को एकाग्र करना चाहता है, लेकिन ज्ञानी समझता कि एकाग्र करके भी उस वृत्ति से जब तक मैं निवृत्त नहीं हुआ वो एकाग्र वृत्ति फिर चंचल हो सकती है, वो ऊपर की वृत्ति फिर नीचे के केंद्रों में आ सकती है, और अपने को जब तक कर्ता मानूंगा तब तक सुख दुख लाभ हानि पुण्य पाप जन्म मरण चालू रहेंगे। इसलिए ज्ञानी वृत्ति को बाधित कर देता है। ज्ञानी वृत्ति जिस अंतःकरण से निकलती है वो अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति और वृत्तियों के द्वारा इंद्रियों की प्रवृत्ति, इन सब को अपने से पृथक जानकर, जैसे आप अपनी गाड़ी अपने से पृथक जान के उसकी ड्राइव करते हैं, अपना स्कूटर अपने से पृथक जान के ड्राइव करते हैं, आप तो करता है, सच पूछो तो करता वर्ता क्या हो रहा है, आदमी आ गया तो ब्रेक लग जाती है, कहीं कोई सामने ट्रैफिक है तो हॉर्न पे हाथ चला जाता है, ये सब सिस्टमेटिक होता रहता है, लेकिन हम मानते कि मैंने ब्रेक लगाई, लगनी है, पैर पहुंच ही जाते हैं, भूख लगी तो रोटी के तरफ मनीराम चला ही जाता है, प्यास लगी तो पानी के तरफ पहुंच ही जाता है, एक ऐसी मशीनरी और मोटर फिट की है कि नाक में सड़वड़ाहट हुई तो हाथ छींक हो ही जाता है, कोई प्लान बनाते हो, छींक देने की कोई कोशिश करते हो, छींक आ जाती है लेकिन तुम कहते हो मैंने दी, बगासा आ जाता कि मैं बगासू खा दू, ऐसे ही संसार का जो कुछ व्यवहार है प्रारब्ध वेग से हो जाता है, ऐसा समझकर ज्ञानी अपने वर्तमान प्रारब्ध में कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार कर लोगे तो तुम है सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने लग जाएगा, और यदि इच्छा के अनुसार होने लग भी जाए समझो कुछ, तो फिर इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी, जय जय, तो न तुम्हारी इच्छा के अनुसार सब होना संभव है और सब इच्छाएं तुम्हारी फेल होना भी संभव नहीं, लेकिन इच्छा मात्र जो है वृत्ति है, और वृत्ति से जब तक निवृत्ति नहीं हुई तब तक महाराज ऊपर नीचे सुखद दुखद ये प्रवृत्ति बनी रहती है। तो बाप जी वेदांतनी दृष्टि तो सौ करता ऊंची कहवाए कि हा ऊंची तो है, लेकिन इसमें वैराग्य की जरूरत है, विवेक और वैराग्य की जरूरत है, ये बधु ये सब उसमें होता है। ऐसा करके तुम जैसे पाराशर उतर आए संसार में, लेकिन उतरने के बाद फिर ऐसे चले गए कि दिखे भी नहीं, जय जय। श्री कृष्ण संसार में तमाम लीला क्रीड़ा बंसी बजाना ये करना, 9 वर्ष की उम्र में अद्भुत लीलाएं हुई, द्वारका थी, ये परिवार था, ऐसा वैसा तुम हम सुनते हैं, लेकिन देखो कि पुत्र और द्वारका समाप्त हो रही है तो श्री कृष्ण को खेद नहीं, और विस्तार हो रहा है तो उसमें अहम नहीं। ऐसी यदि तुम्हारी वृत्ति, तुम समझो ये वृत्ति का खिलवाड़ है, तो ऐसी यदि पक्की हो जाए तुम्हारी समझ, तो फिर तुमको दुख के समय दुख डिगा नहीं सकेगा और सुख तुम्हें बांध नहीं सकेगा, और सुख दुख दोनों जिसको नहीं बांध सकते वो तो मुक्त है ही है। सच पूछो कि तुम्हारे असली स्वरूप को सुख और दुख कभी बांधा भी नहीं है, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को, तुम्हारे आत्मा को आज तक सुख ने और दुख ने किसी ने बांधा नहीं, लेकिन तुम जानते नहीं वास्तविक स्वरूप को, इसलिए शरीर को मान लेते। मैं बंगाली महात्मा की मैंने तुमको बात बताई थी कुछ समय पहले, वो बंगाली महात्मा महात्मा कैसे बने कि वो जज थे, न्यायाधीश थे, जूरी में बैठे थे, किसी अपराधी को फांसी लगनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने की बात है, 1942-44-45 के इर्द गिर्द की हो गई, तो 5 जज न्यायाधीश बैठते थे फांसी के समय, तो उसको 5 बजे शाम को फांसी लगनी है, यहाँ का कुर्सी पे बैठे उसको सामने देखा मुजरिम को, जज ने बोला कि अपराधी तो नहीं, इसको फांसी कैसे दी जाए, सेशन कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तुम इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं, मैं तो खाली बैठना ही है, बोले नहीं ये अपराध निरअपराधी है, आपस में वो उनका चल पड़ा कुछ। ऐसे करते करते कलह में थोड़ा समय बीत गया, 5 बजकर कुछ देर भी हो गई, ऑर्डर नहीं दे पाए, अब तो वो बच गया, समय बीतने के बाद फिर फांसी नहीं लगती। फिर देरी से तार आई ब्रिटिश गवर्नमेंट की वहां से, क्यों अपराधी को फांसी ना लगे, तार आने में कुछ लेट सेट हुई कुछ भी, तब इस जज को लगा कि जिस परमात्मा ने मेरे को ये सत प्रेरणा दी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊंधी होके लटक जाती तो इनको हम फांसी दिलवा देते, तो फिर इसको तो जिंदा नहीं कर सकते थे। तो जिस अन्याय को बचाने के लिए परमात्मा ने न्याय की वृत्ति पैदा की, उस परमात्मा को मैं खोजूंगा। वो रिजाइन करके चल दिए, प्रमोशन का प्रलोभन मिला, ये मिला वो मिला, लेकिन विवेक पक्का था, वैराग्य मजबूत हो गया था, चल पड़े खोज में किसी गुरु महाराज की। गए हरिद्वार, गए ऋषिकेश, गए काशी मथुरा, खोजा, लेकिन देखा तो कहीं छोटी दुकान, कहीं बड़ी दुकान, कोई 1008 तो कोई जगत का गुरु, लेकिन अपने मन का गुरु कोई दिखा नहीं उनको। कोई विश्व के गुरु, कोई जगत के गुरु, किसी का बोर्ड और लंबा, किसी का कम, किसी की छोटी गादी, किसी की बड़ी गादी, गादियां मिली, कोई गुरु नहीं मिला। श्री राम न्यायाधीश थे, निर्णय शक्ति तो अच्छी थी, साधक भी थे, साधन भजन करते थे, तो अपने से बड़ी शक्ति के बिना सिर झुकता नहीं। तो कहीं भी जाए तो अच्छा आप न्यायाधीश थे, बैठे बैठे खम्मा 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 खम्मा, बोले जो ये मेरे से इंप्रेस हो गए, खम्मा खम्मा कर रहे, मेरा घर तक क्या करेंगे। खूब भटके बेचारे, लेकिन इनको कोई ऊपर उठा सके ऐसा इनको कोई दिखा नहीं। आखिर परेशान हो गए, रात्रि के मध्यान वक्त कमर में पत्थर बांधकर गंगा किनारे खड़े हुए और कूद के आपघात कर लें इस जीवन से भी क्या के। एक तरफ तो भोग घसीटते, सत्य का साक्षात्कार नहीं और असत्य में सार नहीं, जीकर क्या करना, त्रिशंकु होकर क्या करना, इसे मर जाना अच्छा। तो रात्रि के समय ऋषिकेश में गहरे पानी की जगह पर जो जंप मारने की तैयारी की कि बस अब कूद मरूं, आपघात करूं, आपघात माना देह घात, अहम घात नहीं, शरीर घात करूं, बस उठने की, बस जंप लगाने की तैयारी, पंजों के बल से शरीर उठ चुका था, बस गंगे हर कह रहे थे मन में, एकाएक किसी अजनबी चेतना ने, अजनबी आदमी ने आकर हाथ पकड़ लिया। ऐ मूर्ख कहीं का, आप घात करता है, अहम घात नहीं करता, गुरु नहीं मिलते, जा मैं तेरा गुरु हूं, जा नारायण नारायण जप, प्रभु हे भगवान हे गुरुजी आप कहां से आए, ये मत पूछ, जा मैं तेरा गुरु नारायण नारायण जप। वो कहो के वो योगी अदृश्य हो गए। वे बंगाली जज साधु वेश धारण करते, नारायण नारायण करते, घूमते घामते चाणोद करनाली है इधर बड़ौदा के पास, किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और वो धुनी दुखाई उन्होंने अपनी, नारायण नारायण जप करते करते वो वैखरी वाला फिर मध्यमा में आया, फिर पशंति में आया, उनका थोड़ा सामर्थ्य चमन प्रभाव बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ कि लोग उनको बोलते बाबा जी हमारे घर भिक्षा लो, हमारे घर भिक्षा लो। उन्होंने कहा कि जो पड़ोस पड़ोस के लोग मिलकर आए और कीर्तन करते करते मेरे पास आए और मुझे ले चले भिक्षा के लिए, मैं उसकी लूंगा, ताकि भीड़ घट जाए, आग्रह घट जाए और लोगों भगवान के रास्ते लगे। तो लोग ऐसा करने भी लग गए, बाबा जी भिक्षा ले आते, नर्मदा जी में खारा खट्टा अर्पण करके बाकी नहीं स्वाद लेकर भोजन करते और अपना पेड़ के नीचे मानसिक साधना करते रहते। उनकी वृत्ति इतनी एकाग्र हुई और अनजाने में लोग बोलेंगे बाबा जी को भगवान को जो बोलते थे भगवान आके करते थे, ऐसी बात नहीं है, छुपा हुआ परमात्मा है। यदि तुम्हारी वृत्तियां कल्पनाएं कम हो जाती है तो तुम्हारी वृत्ति में इतना संकल्प की तीव्रता हो जाती है कि बाह्य स्थूल जगत पर भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। कोई बाबा जी ने गाड़ी रोक दी, कोई बाबा जी ने निहार और बरसात कर दी, कोई ने कुछ कर दिया, तो ऐसा थोड़े को बाबा जी यूं करता है कि हे भगवान अब तू दया कर, बादलों को इधर से भेज उधर से बोझ धक्का मुक्की कर, नहीं, उनके संकल्प मात्र से वातावरण में हो जाता है चेंज। जैसे मेरा संकल्प तो सूक्ष्म है तो सूक्ष्म, अथवा ये माइक वाले संचालन जो कर रहे हैं इनका है तो संकल्प, मैं इनको इशारा यूं करता हूं और ये तुरंत सब लाइटें बंद कर देते हैं, है तो संकल्प, लाइट बंद करना दिखा के हो एक एक गोला में जाके क्या किया होगा। जो नितांत गामड़िया उसको आश्चर्य लगेगा, लेकिन तुम नहीं समझा कि कोई सिस्टमेटिक है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही योग के नजर दृष्टि में हम लोग गामड़ी है, उसलिए बोलते कि बड़ू सिस्टमेटिक हो बधु। जय जय ओम 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 ओम। फिर बाबा जी चले गए, वहां से भीड़ होने लगी, आई मौज फकीर की, दिया चाणोद का झोंपड़ा फूंक, बद्रीनाथ गए। और भक्तों को तो श्रद्धा थी, कुछ चमत्कार घट जाते थे, भक्तों को श्रद्धा बढ़ गई। भोजन करो के भगवान को लगाओ, पहले ठाकुर जी को वो भोग लगाओ। बद्री विशाल के धाम में है तो प्रभु खाए फिर खाना चाहिए अपन को। भोजन बनाया लगाया तो भगवान का तो जैसे पंडे लगाते हैं और ले आते हैं। बाबा ने कहा नहीं, भगवान खाएंगे तब खाएंगे अपन। तो मैंने सुना है बहुत लोगों के मुंह से कि भोग लगवाया और जैसे कोई बड़ा आदमी थोड़ी दाल खा लेता है, थोड़ा कुछ भोग उठा लिया, थोड़ा उठा लिया, उसकी खाई हुई थाली दिखे, ऐसे भगवान के वहां लगाया भोग देखा कि भगवान ने स्वीकार किया, बाद में बांटा। ये तो खैर वो न्यायाधीश थे, नर्मदा किनारे आके जमे थे, तप किया था, वैखरी मध्यमा पश्यंती परामे पहुंचे थे, उनके संकल्प में बल था।